का था, रूह वही रूप नया।
उन्होंने कुछ देर पूर्व ही रात्रि का भोजन किया था। पांच पुराने मित्र, एक लेखक, एक चिकित्सक और तीन धनी कुंवारे जो रोजगार रहित थे, वे सभी विषयों पर चर्चा कर चुके थे और एक उकताहट उनमें आ रही थी। वो सोच जो पहले के तब आती है जब उत्सव आयोजन के अतिथियों को प्रस्थान करने का विचार होता है। उन उपस्थित अतिथियों में से एक ने जो पिछले 5 मिनट के बिंदुकृत आवेशित मुख्य द्वार को खामोशी से घूर रहा था, जिन पर गैस लैंप आलोकित थे और जिन पर आवागमन के साधन खड़खड़ाहट का स्वर पैदा कर रहे थे, वो अतिथि अचानक उठा और बोला, जब आपके पास सुबह से शाम तक कुछ भी करने को नहीं होता तो दिन बेहद लंबे प्रतीत होते हैं। और रात्रियां भी। अतिथि ने सहमति दर्शाई जो उसके साथ ही बैठा था। मैं बहुत कम सो पाता हूं, खुशियां मुझे थका देती हैं, बातचीत नीरस प्रतीत होती है, मैं किसी नए विचार पर कभी नहीं पहुंच पाता। मैं किसी के सामने बोलते हुए भी ये महसूस करता हूं कि लंबे समय तक किसी से कुछ कहा ही ना जाए और ना ही कुछ सुना जाए। मैं नहीं जानता कि सांझ के समय क्या किया जाए। तीसरे काहिल ने टिप्पणी की, मैं अपने 2 घंटे शानदार ढंग से गुजारने के लिए कुछ भी देने को तत्पर रहूंगा। लेखक, जिसने कुछ देर पूर्व ही अपना ओवरकोट अपनी बांह पर लटकाया था, उनकी ओर घूमा और बोला, वो व्यक्ति जो किसी नए व्यसन की खोज कर उसे साथी प्राणियों के मध्य प्रस्तुत कर सके, बेशक चाहे वो जिंदगी को छोटा कर दे, वो मनुष्यता की महान सेवा करने का कार्य होगा, खास तौर पर उस व्यक्ति की तुलना में जो आंतरिक मोक्ष के लिए युक्ति प्रस्तुत करता है। चिकित्सक बेतहाशा हंस पड़ा और जब वो अपने सिगार को कुतर चुका तब उसने कहा, हाँ, हाँ, लेकिन इसका शोध किया जाना इतना आसान नहीं है। जो भी हो, मनुष्य इस बेहुदा चीज की खोज करता रहा है और उस उद्देश्य पर कार्य करता रहा है जो तुमने बताया, और ऐसा दुनिया के आरंभ से ही वो करता आ रहा है। वे व्यक्ति इस मार्ग पर परिष्कृत रूप से पहली बार पहुंचे थे। अरे, हम तो मुश्किल से ही उनके समकक्ष हैं। 3 निठल्लों में से एक बुदबुदाया, हाँ, कितने खेद की बात है। तब 1 मिनट की खामोशी के पश्चात उसने आगे कहा, यदि हम सिर्फ सो सकें, आराम से सो सकें, बिना सर्दी या गर्मी की अनुभूति किए, उस प्रकार की पूर्ण बेहोशी की नींद ले सकें जिसे हमने थकान के समय में रातों को महसूस किया था। हम बिना स्वप्नों के सोते थे। स्वप्नों के बिना क्यों? अतिथि ने पूछा जो उससे आगे बैठा था। दूसरे ने जवाब दिया, क्योंकि स्वप्न सदैव सुहाने ही नहीं होते, वे हमेशा विलक्षण होते हैं, असंभाव्य होते हैं, असंयोगिक होते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार स्वप्न नहीं देख सकते, हमें जागते हुए ही स्वप्न देखने चाहिए। तो ऐसा करने से तुम्हें कौन रोकता है? लेखक ने पूछा। चिकित्सक सिगार के अंतिम सिरे को अलग करने में जुट गया। मेरे प्रिय साथियों, जब तुम जागे हुए होते हो तुम्हें स्वप्न देखने के लिए बहुत ताकत और बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और जब तुम ऐसा करते हो तो बहुत ज्यादा थकान नतीजे में प्राप्त होती है। अब वास्तविक रूप से स्वप्न देखना हमारी सोचों की वो सुखद दृश्यों वाली यात्रा निश्चित रूप से संसार में सबसे ज्यादा सुखद एहसासों में से एक है, लेकिन ऐसा स्वाभाविक रूप से होना चाहिए ना। ये सब उकसाने वाले यंत्रणादायक तरीकों से नहीं होना चाहिए, और शारीरिक आराम के साथ भी ये सब होना ही चाहिए। स्वप्न देखने की ये शक्ति मैं तुम लोगों को प्रदान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। लेखक ने अपने कंधे उचकाए। हाँ, मैं जानता हूं आशीष, अफीम, हरी चाय, कृत्रिम, ये सारी चीजें जो हैं ये स्वर्ग तुल्य हैं, अरे मैंने बॉडलेयर में पढ़ा है और मैंने विख्यात मादक पदार्थों का सेवन भी किया है यार, जिसने मुझे बहुत बीमार कर दिया था। लेकिन चिकित्सक ने अपनी कुर्सी से हिले बिना कहा, नहीं, ईथर और कुछ नहीं किंतु ईथर। और मैं तुम सभ्य जनों को ईथर का कभी कभार उपयोग करने का परामर्श देना चाहूंगा। तीनों रईस कुंवारे चिकित्सक के नजदीक आ गए। उनमें से एक ने कहा, अरे वाह, हमें इसके प्रभाव तो बताओ। और चिकित्सक ने जवाब दिया, भारी भरकम शब्दों को अभी ताक पर रख दो यार, क्या हमें ऐसा करना नहीं चाहिए? मैं दवा और नैतिकता की बात नहीं कर रहा, मैं आनंद की बात कर रहा हूं। तुम लोग अपने आप पर जरूरत से ज्यादा जातियां करते हो और जो तुम्हारी जिंदगी को निगल जाती है। मैं तुम लोगों को नई और सनसनीखेज अनुभूति करवाना चाहता हूं दोस्तों, और ये बुद्धिमान लोगों के लिए संभव है। हमें यहां तक कहना चाहिए कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को खतरनाक प्रत्येक उस वस्तु के समान जो हमें अतिरिक्त रूप से रोमांचित करती है, उत्साहित करती है, हमारे शरीर के अंगों को, लेकिन उत्कृष्ट तरीके से। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि तुम्हें निश्चित तैयारी करने की आवश्यकता है। कहना यह है कि संपूर्णता की अनुभूति का ज्ञान करने हेतु अभ्यास करना होगा। इसमें एकमात्र ईथर ही कामयाब है। ये ईथर का प्रभाव है कि वो आपको पूरी तरह से संपूर्णता की अनुभूति देता है। ये प्रभाव हशीश और अफीम के प्रभाव से अलग होता है यार, मार्फिया से भी अलग होता है, और इसका प्रभाव इसके अवशोषित होने के पश्चात ही समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी दिवा स्वप्नों वाली दवाओं का प्रभाव घंटों तक रहता है। मैं उन अनुभूतियों के संबंध में विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, इतनी सहज, इतनी नाजुक और इतनी अप्रत्यक्ष अनुभूतियां होती हैं। ये मेरे साथ तब घटा था जब मैं उग्र तंत्रिका तंत्र की बीमारी से ग्रस्त हुआ और मैंने तब इस चिकित्सा का उपयोग किया। मेरे सर में तेज सिर दर्द बना रहता था, गर्दन में भी दर्द रहता था और त्वचा में असहनीय उष्णता महसूस होती थी, जैसे कि बुखार जैसी बेचैनी। मैंने ईथर की एक बड़ी बोतल उठाई और नीचे लेट गया। मैंने उसे खींचना आरंभ किया। कुछ मिनटों की समाप्ति के पश्चात मैंने सोचा कि मैं हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुन पा रहा हूं, जो पहले मरमर पक्षी के स्वर की भांति प्रतीत हुई, और ऐसा लगा जैसे मेरे आंतरिक जिस्म हल्के हो गए हैं। मैं हवा की भांति हल्का, जैसे कि वो सारा शरीर वाष्प में बदल गया हो। फिर एक प्रकार की जड़ता उभरी, शयन से उपजने वाले आराम जैसी सनसनी। दर्द के बावजूद जो कुछ भी तब हो रहा था, लेकिन जो एहसास होना बंद हो गया था, ये उन उत्तेजनाओं में से एक था जो हम सहन करना चाहते हैं। उन उत्तेजनाओं में से नहीं था जो डरावना और ऐंठन युक्त हो, जिसके विरुद्ध हमारा जिस्म आपत्ति करता हो, वैसा बिल्कुल नहीं था। शीघ्र ही अनजान और सुखद रिक्तता का एहसास मैंने अपने सीने में महसूस किया, जो मेरे जिस्म के उन अंगों में भी व्याप्त हो गया, और अपनी बारी आने पर सारे अंग हल्के 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 होते चले गए। मेरा शरीर इतना हल्का जैसे कि मांस और हड्डियां पिघल रही हैं, और महज त्वचा भर रह गई है। त्वचा मुझे जिंदगी की अनिवार्यता और उसकी मधुरता की अनुभूति करवा रही थी, मुझे अच्छाई के स्नान का बोध करवा रही थी। तब मैंने महसूस किया कि मैं किसी भी प्रकार से रुग्ण नहीं हूं। दर्द जा चुका है, पिघल चुका है, भाप बनकर उड़ चुका है। और मैंने आवाजें सुनी, चार आवाजें, दो वाक्य, बिना समझे कि कहा क्या गया है। एक समय पर वो अव्यक्त अस्पष्ट आवाज लगती थी और दूसरे ही समय पर एक शब्द मेरे कान में पहुंचता था, लेकिन मैं उसे मरमर पक्षी की ध्वनि के रूप में पहचान पा रहा था, जो मैंने पहले भी कहीं सुनी थी। जोर दे देकर कहता हूं, मैं सोया नहीं था, मैं जागा नहीं था, मैं दोनों के मध्य की स्थिति में था। मैंने महसूस किया मेरे उच्चतम स्पष्टता और गहराई की स्थिति को। उसमें एक असामान्य ताकत और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रसन्नता के साथ तार्किक रूप में मैंने खुद को महसूस किया। एकाकी मादकता के साथ
मैंने अपने दिमागी विभागों को महसूस किया। ये उन स्वप्नों की भांति नहीं था जो हशीश के कारण पैदा होते हैं, या यूं कहो कि कुछ हद तक उस बीमारी की सोच के कारण होते हैं जो अफीम से होती है। इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक तीखापन था जो दृष्टि को नया आयाम प्रदान कर रहा था, जिससे जिंदगी की चीजों को परखा जा सके। और मैंने धार्मिक पुस्तकों की कल्पनाएं तक जहन में महसूस की। मुझे लगने लगा जैसे मैंने बोधि वृक्ष का स्वाद चख लिया है, अनुभूति की है, और जिससे सभी तरह के रहस्य खुल गए हैं। इतना कुछ क्या मैं अपने अंदर तलाश कर सकता था? ये एक नया, अनोखा और एक अकाट्य तर्क था जो मैंने सीखा। और तर्क, तार्किकता, सबूत एक अंबार की तरह मेरे जहन में उठ खड़े हुए। महज तत्काल रूप से कुछ ताकतवर सबूत, विश्लेषण और तर्क को परिवर्तित करने हेतु मेरा सिर वस्तुतः विचारों का संग्राम स्थल बन गया था, और मैं अपने आप को बहुत महान अनुभव कर रहा था। अदृश्य बुद्धिमानी से सज्जित, और मैंने वृहद खुशी का अपनी ताकत में आविर्भाव होते अनुभव किया। यह अनुभव बहुत देर तक रहा, लंबे समय तक रहा। मैं अभी भी अपने शराब के ग्लास में ईथर को खींचता रहा हूं। अचानक मैंने अनुभव किया कि वो खाली हो गया था। चारों व्यक्तियों ने एक साथ आश्चर्य का इजहार किया और बोले, चिकित्सक महोदय, एक नुस्खा तत्काल दें 1 लीटर ईथर हेतु। लेकिन चिकित्सक ने टोपी सिर पर रखते हुए कहा, जैसा कि तुमने कहा, जाओ किसी और से कहो कि तुम्हें जहर दे, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बारे में आपकी क्या राय है?